तस्मिन्नैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाप्रदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्ये गौरवे हे कृष्णवर्णासिंहो दीनबन्धो जगत्सते गौरंगी राधे बृंदावनेश्वरी विषमानुप्रेमि आदेविका कुंवरगदयाच जाते पत्तभूमिदंडवतोपतरति अंगश्यामलिच्छटाधिरसितो मन्दीक्षिन्दीवरं जट्टं जागृतज्योतिषं विदधतं पट्टमुदरस्य रसिया वृन्दारण्यनिवासितं हृदिरसद्धामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोद्यम् भक्त्या विहीनापरार्थलक्ष्यै चित्तस्य कामादितं गमन्ते पितामहीं तं शरणं गमन्ते गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय यं प्राव्रजन्तां ते तमपेत कृत्यं दैपायनो बताओ तो रामानंद के संबंध में तू क्या जानता है? खड़े हो तो तुम्हारी इच्छा से भजन राज्य का सर्वोत्तम निगूह तत्व रामानंद संवाद ने उन्होंने प्रकाशित किया। वेदों में शास्त्रों में कहीं भी प्रकाशित नहीं था जो कृष्ण की सबसे सर्वोत्तम कौन सी सेवा है उसको उन्होंने प्रकाशित। उस चीज को पाने के लिए ही उन्होंने उपाय बताए। वही बतला रहे हैं उस गोपी भाव को पाने के लिए से गोपी भवान मुझे जार लोक भाव जिसको लोक रहता है वो वेद धर्म त्यागि से कृष्ण के भजन वो वेद के धर्म को छोड़ करके कृष्ण का भजन करता है। तो वेद का धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, पति पत्नी की अच्छी तरह से सुरक्षा करो, सभी अपने अपने धर्म में ठीक है। ब्राह्मण लोग अपना धर्म करें, क्षत्रिय लोग अपना धर्म पालन करें, वैश्य अपना धर्म पालन करें, प्रत्येक सन्यासी अपना धर्म पालन करें, वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म का भाव, किसका नाम है वेद धर्म। यदि शूद्र ब्राह्मण का कार्य करता है तो ये वेद धर्म का उल्लंघन हुआ। इसलिए रामचंद्र जी ने अपने समय में एक शूद्र को इसीलिए बाण से मार डाला। यदि कोई माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसको नरक को होना। यदि सन्यासी अपने धर्म को छोड़कर फिर से संसार धर्म करता है तो उसको वानताशी कहते हैं। वानताशी माने वानता आशी, तो उल्टी करके फिर उसी को खाने वाला कहलाता है और समाज के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा भी, सबके द्वारा बहिष्कृत हो जाता है। इस तरह से वर्ण और आश्रम के धर्म को पालन करने के लिए वेदों का आदेश, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए इत्यादि, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, अतिथि देवो भव, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देवो भव इत्यादि। किंतु कृष्ण भजन में रागादुनागा की बात ही क्या, वैदिक धर्म में भी यदि रुचि हो गई, वैदिक धर्म में भी किसी प्रकार से वो भजन करने लगा तो किसी भी वर्ण और आश्रम का क्यों व्यक्ति वो भगवान का भजन कर सकता है। यहाँ तक कि संसार का भी त्याग कर सकता है, शूद्र भी भगवान का भजन करने में अधिकारी है, एक महिला भी भगवान को भजन करेगी तो वो जो पति इत्यादि की सेवा का जो यह है ये भी उससे दूर हो जाए। जैसे मीराबाई ने अपने पति, समाज, लोग, धर्म, वेद सब को छोड़ करके किया, जैसे गोपियों ने किया तो वेद धर्म इत्यादि को छोड़ करके भी किया। तो रागानुगम भक्ति की तो बात नहीं है, हम लोग भी वेद धर्म को छोड़ करके भजन कर रहे हैं। स्त्री को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, माता को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, हमारा जो उत्तराधिकार का जो जमीन जायदाद जो कुछ था उसको भी छोड़ दिया। इस तरह से यदि कृष्ण के इस भजन में गोपी भाव रूपी अमृत में किसी को पाने के लिए दूर हो गया तो वेद धर्म इत्यादि छोड़ करके नहीं, अपने आप वो छूट जाता है, अपने आप छूट जाता है। यदि थोड़ा सा लोप हो गया तो अपने आप सब कुछ छूट जाता है। अब देखिए ना इन लोगों को, ये तुंग विद्या जी है, समाज छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, ही हैज लेफ्ट हिज कंट्री, हिज फादर मदर चिल्ड्रन एवरीवन ही हैज, ही इज नॉट थिंकिंग दैट हाउ आई विल डू इट इन माय फ्यूचर लाइफ। इस तरह से ये सब कुछ छोड़कर ये भजन ही ऐसा, तो रागांग भजन यदि है तो उसमें तो बात नहीं, सब कुछ आदमी छोड़कर। जैसे देखो हमारे रघुनाथ दास वेद का क्या धर्म था, माता पिता की सेवा करते, उनकी नई विवाहित स्त्री थी, माता पिता के अकेले ही लड़के, कोई दूसरा लड़का भी नहीं था, उन्होंने क्या किया, सबको छोड़ करके महाप्रभु के चरण में चले। और लोक धर्म वेद धर्म में जो देवताओं की पूजा की बतलाई गई है, इंद्रम जजामहे इत्यादि, जिस विष्णु की बात कही गई है, ओम तत् विष्णु परम पदम सरापस्यन्ति सूरयः इव चक्षुरातदम, वो विष्णु को भी दरकिनारे कर दिए और कहां चले गए, गोपी भाव से चले गए। इस तरह से शास्त्रों में सब उदान उदार में दिखता है, ये भजन सर्वोत्तम है, इसलिए सब को छोड़ करके भगवान का भजे से जय ज्ञान पाए ब्रजे भजन। ब्रजानन नंद को पाने के लिए, कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण माने ब्रजानन नंद, कृष्ण का निश्चय द्वारकाधीश भी हो जाएगा, मथुरेश कृष्ण के भी हो जाएगा, किंतु ब्रजेंद्र नंदन कहने से एकमात्र नौ किशोर नटवर गोपेश तो उनके प्रति उनको पा सकता आदमी कैसे? इन सब चीजों से वैदिक भक्ति के द्वारा भी उनको नहीं पा सकता, उनको पाएगा केवल राग के अंगत होकर के। जिस राग के द्वारा हम इस संसार में लपट जाते हैं, वही राग यदि भगवान के प्रति दे करके दिया जाए तो उसको कहते हैं राग वैभव। और इस जीवन में जो हम उस राग के द्वारा, राग माने यहाँ पर आसक्ति हो जाएगी, वो अब राग नहीं रहेगा, आसक्ति और मोह में डूब करके संसार में सदा के। इसलिए विषय में जो हमारा प्रेम है, जो प्रेम कहते हो या आसक्ति कहते हो, ये को लगा दिया जाए भगवान में, कृष्ण में, वही भक्ति हो जाए। भक्ति करना कठिन नहीं है, किंतु बड़ा कठिन भी है बदलना, ये विषयों से अपने प्रेम को घर में बदल देना, ये किंतु जिसके लिए है उसके लिए बहुत सुपर भी है। ब्रजलो के कौन भाव लइया जाई भजे, ब्रज का कोई भी भाव लेकर के, ब्रज में चार भाव है, चार भाव में एक को और भी बात दे, तीन भाव है ब्रज, सत्य असल्य इन ब्रज देर आर थ्री मोड्स, मतलब टू मोड्स आर हिडन, दो तीन मोड वहां पर तीन भाव प्रकाशित। दास्य भाव भी ब्रज में काम उतना नहीं करता, यो तो मधु से लेकर के पांचों को ही दास करते हैं। राधा जी का भी दास्य है, बलदेव प्रभु का सबका भी दास्य है, किंतु फिर भी इसमें तीन जो है प्रधान माने गए, सख्त असल। ये ब्रजलोक और इन तीनों में से कोई एक भाव लेकर के जो कृष्ण का भजन करता है, भजन माने कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वैसे भजन करे, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के द्वारा करे, जो साधन अर्थ इत्यादि के लिए न होकर केवल भक्ति कृष्ण का के प्रति उन भावों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है वो साधन भक्ति, और प्रेम को लक्ष्य करके जो साधन किया जाता है उसको भाव भक्ति। इनके द्वारा यदि उन तीनों में से कोई एक के प्रति लोभ हो और उसके द्वारा कृष्ण के प्रति चित्त को लगाए, चित्त को कैसे लगाए, उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का स्मरण, उन्हीं की बातें सुनना, उन्हीं की बातें करना, यही भजन, इन भजन के द्वारा प्रजेंद्र नंदन को पा सकते। इनमें से यज्ञ पत्नी थी मथुरा वाली, तीनों में से कोई एक भाव ही नहीं लिया, इसलिए कृष्ण ने ग्रहण नहीं किया, क्यों मतलब उनको कृष्ण की प्राप्ति क्यों नहीं हुई प्रजेंद्र नंदन?
ब्राह्मण अभिमान, ब्राह्मण अभिमान,
ब्राह्मण अभिमान कोई बात नहीं, तीनों में से किसी का अनुगमन नहीं किया, अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, इसलिए स्वतंत्र रूप में वो कृष्ण को पाना चाहते, किंतु इन्होंने किसी का अनुगत्य नहीं किया, श्रुतियों ने किसका अनुगमन किया, श्रुतियों ने पाया गोपियों का अनुगत्य, दंडकारण्य वासियों ने क्या किया, इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु जी के परिकर में जब देखा जाता है सब लोगों ने गोपियों का अनुगत्य, कोई यशोदा मैया का, नंद बाबा का अनुगत्य कर सकता, कोई शिवल सिद्धांत सुबल इत्यादि का अनुगत करता है। इन तीन वर्णों के अनुगत होकर के जो भजन करते हैं रूप गोस्वामी के अनुसार, रूप गोस्वामी ने जैसा बताया है, तो उसके द्वारा भजन रात नंदन को शाम को पाएंगे। जो लोग राधा कृष्ण का भी भजन करते हैं किंतु कुछ ऐश्वर्य बुद्धि लेकर के करते हैं, जब कृष्ण हे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हे कृष्ण हमें उन्हें कोई अनुगत्य नहीं है, उनको क्या प्राप्त होगी, यदि भजन करके सिद्धि भी होगी तो क्या होगी, द्वारका महिषियों का भी अनुगत्य नहीं किया और उनका भी अनुगत्य नहीं आता, ऐसे लोगों का ही गोलोक में होगा। ऐश्वर्य भाव से स्वकीय भाव से कुछ वहां पर हो सकता है, उसमें भी अनुगमन करना पड़ेगा, अनुगमन नहीं है तो नहीं पाएंगे। कहाँ जाएंगे वो बैकुंठ लोक के नीचे मुक्ति पाएंगे। अनुगमन होना चाहिए, उनका अनुगमन नहीं है ना, और ये उनका यथातथ वो भजन भजन भी नहीं है। अभी हम लोग जिस स्थिति में हैं वो अभी अभी उसका क्या मूल्य, अभी अनर्थ भी दूर नहीं हुआ, वैसा स्थायी भाव नहीं हुआ, केवल ऐसे थोड़ा सा भजन करने से ही हो जाएगा, भावना इच्छा करने से।
ऐसे साधकों को तो कोई जन्म तक साधन भजन करते हुए सिद्धि लेना पड़ेगा।
सिद्धि माने मिलेगा तो जब यहाँ पर रहने वाले जो भक्त हैं, जो रसिक भक्त हैं, रसिक तत्वज्ञ हैं, समर्थ हैं, उनका अनुगमन यदि किया जाए तो उनकी कृपा से तब वो यथार्थ तो स्थायी भाव इत्यादि धीरे धीरे आकर के तब फिर, अन्यथा ऐसे ही नहीं होता। इसलिए या तो भगवान की कृपा अथवा भक्तों की कृपा। अब जैसे देखो शिवाज पंडित जी रामानंद का भी संग पाए, स्वरूप दामोदर जी का भी, स्वरूप दमन का दामोदर जी का भी, अचैतन्य महाप्रभु स्वयं का उन्होंने संग पाया, उनको क्या हुआ, वही नारद जी जैसा दास्य भाव रहा। तो इसमें दो कारण मालूम होते हैं, एक तो वो नित्य सिद्ध परिकर है उस रस के, इसलिए, और परिकर नहीं है तो उनको उतना ही तक है, दास्य भाव तक का है नारायण का, इसलिए हुआ। नहीं तो संगतों को कितना मिला कितना नहीं बदल सकता। ब्रज लोग का दोनों भाव ले, कोई उनका भाव लेकर भाव योग्य देव पा करके माने सिद्ध देव,
तब ये लोग कारणावधि साहिब विष्णु से प्रकाशित है ऐसा माना जाए।
कौन
जैसे जो वैकुंठवासी भक्त लोग हैं जीव स्वरूप गत
महासंकर्षण के द्वारा भी हो नहीं, इन्हीं के द्वारा, यहाँ पर जितने भी बद्ध जीव हैं सब इन्हीं के, किंतु उनमें सभी कुछ हो सकता है, मधुर रस का भी बीज हो सकता है, प्रकटित माने उन्होंने जन्म नहीं दिया, उनके यहाँ से प्रकट हुए
मान। भविष्य पुराण में ऐसा बताया कि ये अव्यतनु भगवान माने जो कि मिलित तनु हो करके रहे हैं, और फिर राधा कृष्ण के रूप में जब संभोग में लीला करने की इच्छा हुई तो उस समय राधा कृष्ण के रूप में बने। अच्छा एक राधा और कृष्ण भी, तो उसमें से बोले कि कृष्ण के अंग से कारणावधि साहिब इसमें प्रकाशित किए,
तो चैतन्य चैतन्य का ये सब
नहीं नहीं उसमें वो दिखाया कि कारणावधि साहिब इसमें से जितने जीव सब प्रकाशित हुए, और राधा जी से 3 करोड़ गोपियाँ और कृष्ण से 3 करोड़ गोप प्रकाशित हुए, तो इस तरह से वो प्रकाश में सृष्टि क्रम
जैसे कृष्ण का कायदु जैसे चैतन्य चैतन्य कृष्ण से कायदु राधा जी से कायदु, यहाँ पे दृष्टांत उपनिषद सूदिगम उपनिषद और सूक्तियाँ इसके लिए प्रमाण है, दृष्टांत है। राजमार्ग में पति पाइलो प्रचंड राग मार्ग में खनन करके उन्होंने कृष्ण को पाया। कहाँ लिखा है? भागवत में लिखा है। कहाँ लिखा है? श्रुति स्तव में लिखा है। श्रुति स्तव में मैंने
निवृत्त अमृत मना दिया है।
ये दिख ला रहे हैं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में एक 87 अध्याय के 23वें श्लोक दिया गया है। उसमें जन लोक लोक में ब्रह्मशत्र यज्ञ चल रहा था। जन लोक मैंने जन जन के बाद ही में क्या है?
तप।
तो इस जन लोक में सनक सनंदन सनातन का ये स्थान है,
पिपलायन है।
पिपलायन का उसके नीचे है
भृगु आदि,
महर्षि लोक में उनका है
भृगु आदि। इसमें पिपलायन फिर तपलोक में तो चतुसेन है और सतलोक में ब्रह्मा है।
सतलोक में ब्रह्मा है, उसके नीचे वाले में सनक सनंदन
मोहर लोक में ये
जन लोक में कोई ब्रह्म सत्र यज्ञ चल रहा
है।
तो उसमें सब बड़े बड़े ऋषि लोग भी सनक सनंदन सनातन ऋषि भी उसमें और वक्ता थे। यही कौन? सनक सनंदन या सनातन, इनमें से चारों भाइयों में से एक कोई वक्ता या चारों भाई वक्ता हो सकते हैं। एक एक दिन एक एक प्रश्न का एक एक उत्तर। जैसे नौ जोगेंद्र ऋषि लोगों में से जनक जी एक एक प्रश्न कर रहे हैं और उसका उत्तर एक एक ऋषि लोग दे रहे हैं इसी तरह से। तो उसमें ऋषि वर्गों को ये बतला रहे हैं सनक सनातन इत्यादि लोग बतला रहे हैं। उसमें ये बतला रहे हैं निवृत्त मत मनो अक्ष दृढ़ जूह जो हृदय जन मुनयो उपासते तदरो अपि जयो स्मरणात् स्त्रियो उरुगेन्द्रभ्यो भुजदण्ड विशक्तदियो वयमपि ते समासमदृशो अङ्घ्रि सरोजस्वभाति। जी गोस्वामी ने षट संदर्भ में कहीं इसका अर्थ बतलाया है। एक एक शब्द का बहुत सुंदर अर्थ बतलाया है।
स्त्रीय उरगेंद्र भोज भोग विशक्त थी।
इसमें ये बतला रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी संक्षेप में
उरगेंद्र भोग
कि समदृश जो इसमें शब्द है समदृश समा उरुगेंद्र भुज भोग भुज दंड विषक्त धियो ये अलग अलग इसका अर्थ किया है। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर समदृश वयमपि हम लोग भी ते समा माने गोपियों के समान समा समदृशो अंग्री सरोज सुधा। अर्थात यहाँ पर समदृश शब्द से सेई भावे अनुगति समदृश उनके समान अनुगति उनके समान गोपियों के समान अनुगति गोपियों को राश में देखा। किसने देखा? इन लोगों ने। कैसे देखा? जब ब्रह्मा जी राश को देख करके उसका वर्णन कर रहे हैं तो वर्णन करने के समय में श्रुति मंत्र का तो प्रयोग करेंगे तो उसको सुन करके और इन लोगों को लुप्त अथवा देखा कहां से सुना होगा जरूर कहीं से। देखने का कोई प्रसंग नहीं मिलता किंतु सुनने का ये मिलता है हो सकता है। तो उन लोगों को ऐसे ही लोग हुआ जो गोपियों ने जिस प्रकार की उपासना से कृष्ण को पाया है ऐसे ही हम उनको पाएंगे ऐसा रूप उत्पन्न हुआ। समा शब्द मैंने कहे श्रुति गोपी देह प्राप्ति गोपियों की देह की प्राप्ति का नाम है समा और अंघ्री पद्म सुधा कहे कृष्ण संग आनंद कृष्ण अंग्री पद्म सुधा, जैसे कृष्ण के चरणों में चंदन से लिप्त तुलसी कृष्ण के चरणों में नारायण के चरणों में अर्पित है और उससे सुगंध निकली और सुगंध निकलने से वो आई कहां, सनक नंदन सनार ये चंद्रलोक में वहां पर आई और वहां से वो आकर्षित होकर के वहां पर गए। इसी तरह से अंघ्री पद्म सुधा का शब्द बतला है कृष्ण के संग का आनंद। कैसे, इसके पहले बतलाया तत्ते सुजात शरणम, जिस प्रकार से कृष्ण के चरणों का संग गोपियों को मिला जैसा भागवत में लिखा, उन्होंने अपने मस्तक पर अपने अंगों पर कृष्ण के सुकोमल चरणों को रखा, हाथों को रखा, अपने हाथों में कृष्ण का हाथ लेकर के नृत्य किया इत्यादि उनके संग। इसको देखकर के इन श्रुतियों को, जो ब्रह्मा जी के भी आराध्य हैं श्रुतियां, श्रुतियां माने ये साधारण ब्रह्मा जी के मुख से निकली, इसलिए ब्रह्मा जी इनके पिता इत्यादि हो जाए ऐसा नहीं। श्रुतियों को तो गोपी देव मिल गया, इनको ब्रह्मा जी को मिला, इसलिए ये श्रुतियों को कम मत समझो। ये ब्रह्मा जी से सनक सनंदन सनातन प्रकट हुए हैं, नारद जी प्रकट हुए हैं। नारद जी का ब्रज में बार बार आना जाना, राधिका जी का दर्शन, कृष्ण का दर्शन इत्यादि लिखा है, किंतु ब्रह्मा जी का कहीं लिखा है? इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए उनके पुत्र होने के नाते ये कम है और पिता होने के नाते वो बड़े हैं, ऐसा मत सोचना चाहिए। कोयले की खान से सोना निकलता है, हीरा निकलता है।
क्या है, इन लोगों ने तो किसी ने आलू गोपी अनुगत किया नहीं, इसलिए इन लोगों को भाव दुर्लभ हो गया।
ये भी है, साधन में नहीं हुआ, किंतु श्रुतियों को ये बातचीत हुई। अंग्री उन्होंने कृष्ण के श्री चरण कमलों का अंग स्पर्श करने के लिए लोग उनके हृदय में, यहाँ पर चरण कमल से समस्त अंगों को ले लेना चाहिए। विधि मार्ग ना पाइए ब्रजे कृष्ण चंद्र, विधि मार्ग से कृष्ण चंद्र नहीं मिलते हैं, और लोग होना भी ये साधारण बात नहीं है, गोपियों जैसा हम भजन बहुत ही कठिन है, बहुत कम लोगों को ऐसा होगा। टू लव कृष्ण एज गोपी इज सो रेयर, सो रेयर। सो बाय विधि मार्ग भी कनेक्ट गेट द सर्विस ऑफ प्रजंद नंदन श्याम मल्ली इन अनुगत ऑफ गोपीज,
गाइडेंस ऑफ गोपीज,
इन गाइडेंस ऑफ गोपीज वी कैन रिसीव कृष्ण लव अफेक्शन एंड वी कैन सर्व कृष्ण इन वृंदावन। यहां पर बतला रहे हैं निभृत मरुन मनो अक्षर दीर्घ योग युज, मरुत माने क्या होती है,
वायु,
यहाँ वायु से वायु मत समझो, प्राण समझो, प्राण वायु होती है ना, ये प्राण वायु उनको एकदम संयमित कर दिया, रोक दिया है? ब्रह्मज्ञानी जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्राण वायु को लेकर के रोक करके यहाँ ले
पूरा कुंभ
खींचा और ले करके कितना 60,000 वर्ष तक रोक दिया प्राणदायी को, भोजन की कोई आवश्यकता नहीं, शरीर ऐसे पड़ा दिया। शंकराचार्य जी ने 3-4 महीना किया था, कैसे किया, एक भारतवर्ष में उस समय में शंकराचार्य जी भ्रमण करके सब लोगों को हरा रहे थे, कर्मियों को, योगियों को, तपस्वियों को हरा रहे थे और ब्रह्म ज्ञान का प्रचार कर रहे थे। उस समय सुरेशाचार्य नाम के एक गृहस्थ भक्त थे, वेद मंत्रों के बड़े
ज्ञाता,
चाहते तो वर्षा हो जाएगी, जो कुछ चाहे वो हो जाए, किसी को लड़का हो जाए, जैसा कर दिया वैसा हो जाए, बड़े मर्मज्ञ व्यक्ति। पीछे से शंकराचार्य के चार शिष्यों में से एक शिष्य, तो उन्होंने शंकराचार्य जी सबको हरा दिया, और हरा करके इसका नाम पहले मंडन मिश्र था, मंडन मिश्र के यहाँ आए। यदि आपको उनको हरा देंगे तो भारतवर्ष के जितने वैदिक ब्राह्मण हैं सब उनके शिष्य बन गए। तो उनके पास में आए तो शास्त्रार्थ होने लगा, कितने दिन शास्त्रार्थ हुए, और उसमें अंत में मंडन मिश्र को इन्होंने पढ़ा। वो भी छल कल से, शंकराचार्य जी ने छल का प्रयोग सर्वत्र किया, उनको हरा दिया। तो उन्होंने कहा कि अभी आपने आधा जीता नहीं, मेरी पत्नी को यदि हराएंगे तब पूरा जीते। तो उनकी पत्नी भी क्या नाम था, बड़ी विदेशी महिला थी
कि भारतीय जनता की एक,
उसने कही हमारे पति को आपने जीत नहीं दिया, हमको जीत लीजिए तब आप हमारे पति को जीते। तो उन्होंने शास्त्र में उसको ललकारा, उस स्त्री को, उनके मंडल मिश्र की स्त्री को। तो उसने काम शास्त्र के ऐसे प्रश्न किए जो उनकी बोलती बंद हो गई, क्योंकि काम शास्त्र उन्होंने पढ़ा नहीं था, ब्रह्मचारी हैं इसलिए हार गए। तब उनसे क्षमा मांग करके बोले हमको आप एक महीने का समय दे, हम अभी पढ़ करके तब फिर, हमने कभी आज तक पढ़ा ही नहीं, मैं हार तो गया किंतु हार स्वीकार नहीं कर, एक महीने का समय मांगा। अच्छा, एक महीने के बाद में हमारे पास आ, एक महीने के बाद में शंकराचार्य जी वहां से निकले और अपने शिष्यों को कहा कि हमारा ये शरीर, मैं ध्यानस्थ होता हूँ और एक पहाड़ की गुफा में अच्छी तरह से रखना, कोई भी इसको नष्ट ना कर दे, मैं एक महीने के लिए शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर। और कहा कि कोई आदमी मर जाए तो हमको बतलाना, कोई पुरुष आदमी मर जाए तो वो भी सुंदर सुकांत होना चाहिए। तो इसी बीच में जिस समय वो खोज रहे थे, इतने दिन में एक राजा था वो मर गया, मुर्दा घाट पर उसको ले गए जलाने के लिए। इतने में शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को अपना शरीर दे दिया, था जरा रखो इसको अच्छी तरह से रखना, कोई भी नष्ट ना करे, और उस शरीर से निकल करके इस शरीर में प्रवेश कर गए। तो जब जलाने के लिए उसको लेकर के स्नान करके चिता पर रखा, तो इतने में वो खिलने डुलने लग गया और बैठ गया, भाई मैं तो मरा नहीं, कहिए आप तो मर गए थे, तो नहीं मैं मरा तो नहीं। फिर जीवित हो गए तो सबको बड़ा आनंद हुआ, घर में ले गए, किंतु बड़े चतुर थे ना, उन्होंने तो कहीं उनको घर वालों से, परिवार वालों से किसी से परिचय नहीं, स्त्री को भी नहीं जानते हैं, किसी को नहीं जानते, किंतु इतनी चलाकी से काम किया, ये धीरे 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 घर जाते जाते सबको समझ लिया, पहचान लिया, और उनके साथ वैसे व्यवहार करने लगे, राजगद्दी पर भी बैठ करके चलाने लगे, और अपनी स्त्री से जो पहले प्रेम नहीं उतना करते थे अब बहुत प्रेम करके उसे काम शास्त्र की जितनी बातें हैं सब कुछ जानना आरंभ कर दिया। एक महीने तक रहे, उसकी स्त्री बड़ी चतुर थी, उसने कहा जैसे हम ये तो पहले राजा का ऐसा तो आसक्ति स्त्रियों में था नहीं, अब हमारे प्रति इनकी आसक्ति कैसे हो गई, और राजकाज में ये जो पहले चलाता था उसमें उसको रुचि नहीं है, इधर ही में रुचि है, बाल बच्चों के प्रति रुचि नहीं, धन में रुचि नहीं, किसी विषय में रुचि नहीं है, ये तो कुछ मामला बेहद मालूम होता है, जो वो राजा ने ये दूसरी किसी की आत्मा वो समझ गए। उसने कहा जो ठीक है, अपने कर्मचारियों से कहा देखो इस राज्य में खोजो ढूंढो कोई भी आदमी को देखो मरा हुआ, या उसमें आत्मा नहीं है या समाधिस्थ है, उसको साथ ही साथ जला दो, खोजो ढूंढो। हजारों आदमियों को भेज दिया और वो ढूंढने लगे। जब एक दिन रह गया या उसी दिन ठीक समय में, तो उन लोगों को पता लगा कि उस गुफा में शंकराचार्य का वो शरीर पड़ा हुआ है और उनकी आत्मा वहां नहीं। बस उसने कहा कि उसको जल्दी से चलाना है, वही है और कोई नहीं, जला दो तो फिर ये शरीर में ही रह जाएगा और फिर निकल नहीं सकता है, अब हमारे साथ में वो रहेगा, हमारा पति ही बन करके रहेगा। जो ही जलाने गए इतने में इनको मालूम हो गया, और शंकराचार्य को किसी तरह से शिष्य ने आकर खबर दी, अब तो तुमको जलाने के लिए जा रहे हैं, बस छठ एक मिनट में शरीर को छोड़ करके और उस शरीर में प्रवेश करेंगे, उठ करके खड़े हो गए, नहीं तो एक सेकंड की देरी होती है तो वो ऐसे हो सकता है, पर टाइम में प्रवेश योग के द्वारा कर सकता है। इस तरह से मर्त जिसने अपने प्राण वायु को अपने शरीर में रोक लिया, ब्रह्मांड में रोक लिया, हृदय में रोक लिया, मनो
ऐसे सुना था कि करपात्र जी बोले ऐसे जोग बल से वो खींचना चाहा प्राण वायु को गले तक लाए थे, तो इसके बाद वो बोले कि संभव नहीं है, फिर छोड़ दिया। तो स्कूल के वो पंडित मसाई बोल रहे थे
जो भाई मन को मन माने मन को एकदम स्थिर कर दिया, अक्ष अक्ष माने
इंद्रिया ने
इंद्रियां को सब एकदम रोक दिया जिन्होंने, और दृढ़ योग पूर्वक अर्थात संयत वायु हृदय इंद्रिया दृढ़ योगम युजन्ति, और उसमें लगा दिया ब्रह्म में वेद तथा जैसे हैं ऐसे इन लोगों ने भी अपने मन को अपनी इंद्रियों को और अपने प्राण वायु इत्यादि को संयमित करके उनके चरणों में लगाया, किसके, कृष्ण के चरणों में। जो भी लोग किसको लगाते हैं ब्रह्म में, इन सबको जीत लेते हैं, जितना बड़ा भारी कठिन है। उसी प्रकार से इन्होंने उन्हीं की भांति यथा है ना मुनय उपासते तदवयोपि जयुस्मरणा मरुत मन इत्यादि सबको देढ़ युग युक्त हो करके किसको भुजगेंद्र ने भुजगेंद्र भोग
तो गोपियों के लिए
कृष्ण के ये जो है हाथ कैसे हैं, भुजगेंद्र भोग भुजग माने
सर्प के शरीर के
कैसा होता है
अत्यंत
सुगोल सुगोल फिर पतला होता है और बड़ा ठंडा होता है, बड़ा कोमल होता है,
बिना गंदी है
ना। अच्छा तो ऐसे कृष्ण के बाहु ये दोनों भुजाएं हैं और भुजगेंद्र दंड भुज दंड विषक्त दियो, विषक्त माने अत्यंत विशेष रूप से अनुरक्त होकर के आसक्त होकर के उनका भजन करना, अथवा और बतला रहे हैं
द्वि विशेषेण सक्त आसक्त इति विशेष
मुनय जत मुनि लोग इस प्रकार से जिनकी उपासना हृदय में करते हैं अनुभवंती, वहां पर लोग ब्रह्म की अनुभूति करते हैं अनुभव करते हैं, और ये लोग किसका तब अनुभव करेगी कृष्ण तत् अरय मुनि के अरय अर्थात भगवान के जो शत्रु जैसे कंस जरासंध रावण प्रकृति, ये कृष्ण का शत्रु हुआ शिशुपाल दंत वक्र, इन लोगों ने आसानी से भगवान से शत्रुता करके ही अपने चित्त को उसमें लगा दिया, अपने आप उनका चित्त मन सब कुछ संयमित होकर के उसमें लग गया, चेष्टा अधिक नहीं करनी पड़ी, जो उनको गति प्राप्त हुई उनके अरियों को भी वही गति प्राप्त हुई, क्या हुई उनको भी मुक्ति मिल गई, इनको भी मुक्ति मिली। अभी ऐसे ही स्मरणात वैर्भावे चिंतनात यदि शत्रुओं को भी हो जाती है और क्या उनको मिला, क्या निर्विशेषता पाप प्रापु निर्विशेष ब्रह्म की उद्दीता, बस जाने इतना कष्ट करने पर
शत्रुगण जिस निर्विशेष मुक्ति को पाते हैं मुनिगण इतना कष्ट करके वही उसी गति को
पाया बहुत कठिनता के साथ,
इसलिए हम उधर में न जाकर इधर
अब उसी को ले आए हम, वैसे ही ठीक वैसे ही उरुगेंद्र भोग भुज दंड विषक्त धीय उरुगेंद्र सर्पस्य भोग
सर्पराजस्य वासुकि नागस्य भोग शरीरम इव
भोग माने शरीर ही है जैसे बाप की नाग इत्यादि उनका शरीर ऊपर में मोटा नीचे में पतला होता गया सुकोमल केवल इसी के लिए वो अपना दिया विषाक्त के लिए नहीं दिया और उसमें जो क्रूर स्वभाव है इसके लिए नहीं उसमें सुगंध नहीं है मृदुता नहीं है ये सब चीजें नहीं है केवल उसी के लिए दिया जो ऊपर से एकदम ठीक ये हाथ की रीढ़ नहीं दिखाई पड़ती गांठ नहीं दिखाई पड़ती किसी किसी का हाथ यदि खूब मोटा हो जाता है एकदम ठीक ऐसे ही कृष्ण का तत्तुल्य भुज दंड विषक्ता भी जा अत्यंत विशेष रूप से अनुगत एकदम आ सकता है किनका
श्रुति होता गोपियों का जैसा
चित्त आ सकता है ठीक वैसा इनका हुआ
ऐसे हमारे चित्त भी आ
सकता है
गोपिया
गोपियों का जैसे चित्त आसक्त कृष्ण के भुज मगर सुगंधम
मूर्धना धस्व
गोपियां कृष्ण के इस
अगुरु सुगंधित
भुज चिंता करती हूँ कैसे कैसे हमारे सिर पर कृष्ण कवर रखेंगे आ रहे हैं कृष्ण क्या मथुरा और गोपियां वृंदावन के बीच में पधारे हैं अब शायद आ ही रहे हैं ऐसी भावना कर रहे हैं कब पधारे जब सुना जाए नहीं मूर्छित होकर के साथ ही साथ में वो वयम अभी तत्समा हम भी वयम माने हम भी तत्समा गोपी का काय विभिन्न तत्तुल्य रूपा जैसे गोपियां राधा जी की काय विवाह है इसलिए कृष्ण की भी काय विवाह हुई दोनों एक ही हुआ अथवा गोपियों के काय व्यू हुई है होकर के काय व्यू है ना तत्तुल्य रूपा वैसे ही रूप धारण करके ये समा हुआ अतत नित्य सिद्ध देह को धारण करके सीधा साधा शब्द धारण करके समदृश उस भाव के अनुगत होकर के ऊपर के द्वारा जैसा वैदिक भक्ति है वैसा करते रहेंगे ऊपर से और भीतर से क्या करेंगे वैसा ही सिद्ध देह की भावना करके भावना मैंने भी कहां से आएगी भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा से आएगी उस भावना के द्वारा जैसे गोपियां की सेवा है उस तरह से ये अष्टकाव्य लीला का चिंतन करते 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 हजारों करोड़ों वर्षों में उस पदवी को प्राप्त तथा अंधिशरूप सबसे में उनका ध्यान चिंतन स्मरण इत्यादि करते हुए तद्रूपम तत्त्वम जामि उसके स्वरूप को वो प्राप्त करते इसलिए कहते हैं कि भागवत भी ऐसा कह रहे हैं इसलिए गोपियों के अनुगत के बिना ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को पाना विशेष करके इस माधुर रस में पाना बड़ा भारी कठिन नहीं हो सकता है असंभव है इसलिए अतएव गोपी भाव करि अंगीकार नयन सुखापो भगवान देहिनां गोपिका सुत ज्ञानिनां च आत्मभूतानां यथा भक्तानुतामिनः न अयम अयम माने ब्रजेंद्र नंदन गोपिका कांत जो कृष्ण है राधा कृष्ण है ये भगवान है ना भगवान को बड़ा भारी पाना मुश्किल है इनको अभी बतलाया ना ये इतना ध्यान करके समस्त इंद्रियों को संयम करके ब्रह्म एक निर्विशेष गति को प्राप्त किया बस इतना ही कर दिया और इसमें कोई अधिक परिश्रम नहीं साधारण रूप में गोपियों के जैसी भावना करके उनके अंगत चल करके भगवान होने पर भी देहिनां देहियों के लिए गोपिका सुत जो यशोदा नंदन जो श्याम सुंदर है वो सहज ही प्राप्त हो जाए उनके अंगत ज्ञानी नाम च आत्मभूतान ज्ञानी लोग और आत्मभूताना ज्ञानी लोग ये बतलाया और आत्मभूताना का भी उसने बतलाया
आत्मभूताना योगी नाम इत्यर्थ
इसलिए आत्मभूत योगी लोग हैं अथवा आत्मभूत
लक्ष्मी
आदि और ये ब्रह्मवादी दोनों अथवा ऐसे जो योगी एक, तो ये दोनों भी सहज रूप में उनको नहीं पाते हैं। भक्ति के द्वारा आसानी से जो चीज प्राप्त हो जाती है, इन लोगों में भक्तों को कोई छोड़ने की जरूरत नहीं होती। जो जहां स्थाने स्थिता तन मांग मनोधि, जो जहां है वहीं से, इन दोनों के लिए स्त्रियों के लिए विशेष करके ऐसा योग युक्त करना जो अभी बतलाया वो संभव नहीं। आत्मयोगी लोग जैसा करते हैं उनके लिए भी ऐसा संभव नहीं। ऋषि मुनि लोगों के लिए भी बड़ा भारी कठिन है, किंतु भगवान की जो भक्ति है इतनी सहज है, किसी जाति में कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी अपनी भावना को कृष्ण को देकर के गोपियों के अनुगत्य में या ब्रजवासियों के अनुगत्य में कृष्ण का ऐसा भजन करके सहज ही प्रति को कुछ लोगों की इच्छा हो रही है। अब आ रहा है ये कार्तिक महीना। कार्तिक महीना कैसे व्यतीत किया? एक महीने का समय हम लोग तो यहाँ पर परिक्रमा इत्यादि करते थे। बहुत से लोग यहाँ पर 200-250-300 लोगों को लेकर के चलते। कुछ लोगों का विचार है कि आप लोग कुछ ऐसा करें कि कार्तिक के महीने में हम लोग कुछ हरी कथा सब सुन सके यहाँ पर पूजा, और एक छोटा सा प्रोग्राम ऐसा करें कि ब्रज में तो जाएंगे ही पीछे पीछे नंदगांव बरसाना राधा कुंड श्यामकुंड और सब स्थान बस के द्वारा। पहला जो भाग है 7 दिन का या 10 दिन का कार्तिक महीना, उसमें हम लोग यहाँ से बस योग से एक ऐसा प्रोग्राम कर